Asian Food Center, Indo-Canadian groceries, phal fruit, dalan, sabziyan di one stop shop. Nale sade kol India le bhande, plate, batiyan, sab kuch milda hai. Sadi sariyan hi locations te soniya soniya rakhdiyan di beshumar variety vi hai. Asian Food Center diyan Ontario vich 9 locations vichon jithe marzi aa jao.
क्या बात है बेटे, बढ़िया बाजार नजर आ रही है।
अबू जान, खुदा का वास्ता, इस गाड़ी से प्रोड्यूसर एक गधा गाड़ी खरीदे, हर मोड़ पे रुक जाती है।
तो बच्चे परेशान क्यों होती हो? लाओ गाड़ी की चाबी दो, अभी लेकर जाता हूँ प्रीमियम ऑटो रिपेयर। गाड़ी की नब्ज देखकर खराबी की जड़ तक पहुँच जाएंगे।
मेरी सहेली ने भी कहा था,
वहाँ पर कूलिंग सिस्टम, इंजन ट्यूनअप, चार व्हील कंप्यूटर बैलेंस, ब्रेक, नए और पुराने टायर, साफ आयल फिल्टर, मुफ्त में चेंज, स्टार्टर, अल्टरनेटर गारंटी के साथ ठीक करते हैं। बस इसके बाद तुम्हारी गाड़ी फर फर भागेगी। इसकी मेलविक ड्राइव रिटोबिको, टेलीफोन 416-747-6800।
खाना हो तो आ जाओ शाहीन टिक्का और कबाब।
All your favorite dishes prepared to perfection at Shaheen Tikka and Kebab.
मुझे मजे दे चिकन टिक्के कबाब बिरयानी दाल तड़का,
लाहौरी स्टाइल नाश्ता, मजेदार कढ़ाई, माउथ वाटरिंग कबाब एंड सिजलिंग बारबेक्यू आइटम।
शाहीन टिक्का और कबाब
इन फ्लेमिंगटन मॉल।
समय नाजरी, वेलकम बैक अगेन। 6:44 हमारी घड़ियों में हो चुके हैं और अब वक्त हुआ है आपकी क्या कह सकते हैं, नॉलेज में इजाफा, और पूरी दुनिया में क्या हो रहा है ये सब आपके अगले एक घंटे में आपको सारी की सारी न्यूज मिल जाएगी। एंड दिस सेगमेंट ऑफ द न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय मुस्लिम वेलफेयर कैनेडा, डिवीजन ऑफ मुस्लिम वेलफेयर सेंटर। सब आप लोगों ने कुर्बानी तो करा दी होगी और कुर्बानी का तीसरा हिस्सा जो है, हमारी गुजारिश, हमारी इल्तिजा, हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप मुस्लिम वेलफेयर कैनेडा को दें। मुस्लिम वेलफेयर कैनेडा साल के 12 महीने 365 डेज नीडी लोगों की हेल्प करता है। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप जा सकते हैं mwcanada.org पे। डेंटिस्ट्री और मिसेस सागर डॉक्टर नाजिया रहमान यहां पर होती है। इनका कहना है कि फैमिली ब्रेसेस, कॉस्मेटिक एंड इम्प्लांट डेंटिस्ट्री क्लोज टू योर होम, दो लोकेशन ब्रैम्पटन के इलाके में, और कॉम्प्रिहेंसिव डेंटल केयर मिलेगा आपको। मॉर्निंग, इवनिंग, वीकेंड्स एंड सेम डे इमरजेंसी अपॉइंटमेंट्स भी मिल सकते हैं। डायरेक्ट बिलिंग टू इंश्योरेंस एंड ईजी पेमेंट ऑप्शन। डॉक्टर नाजिया रहमान हमारी और आपकी डेंटिस्ट, 9058721100 इनका फोन नंबर है। ओपन माइक कैफे की बात कर चलो, ओपन माइक कैफे 1310-1310 डंडा स्ट्रीट, डंडा एंड डिक्सी के कॉर्नर पर आपको मिलेगा मिसेस सागा। और सब पाकिस्तान के लजीज खाने खाने हो तो आप पहुंच जाइए ओपन माइक कैफे पर, 416-526-6800 इनका फोन नंबर है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कैलेडिन सब्जी फार्म की बात कर चलो। कैलेडिन सब्जी फार्म कहते हैं कि ऑल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावर्स, इसके साथ साथ रात की रानी भी मिलेगी, जैस्मिन भी मिलेगा आपको यहां पर, तुलसी एंड बहुत सारे फूल पत्ते। इसके साथ अगर आपने सब्जियां लेनी हो, बीन्स, भिंडी, चिलीज, टोमेटोज, एग प्लांट्स एंड मच मच मोर। खाद चाहिए हो आपको, बड़ी अच्छी वाली खाद, सॉयल पॉट्स, गार्डनिंग टूल्स वगैरह सब मिलेंगे। कैलेडन सब्जी फार्म, 9058409000 इनका फोन नंबर है। चलिए साहब, ले चलते हैं आपको। वो कुछ तो नहीं करिए, ना खुद से खेल रही हैं, तो जरा उनको बिजी कर दें। You know what? Everybody have to work, right? So they're all busy karte hain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam. Majid bhai, ye jo aap betting kar rahe hain na aajkal, ye sahi nahi kar rahe hain. Aapko pata hai aaj kya hua hai? Rishi Sunak ka bodyguard betting kar raha tha, phad liya usko, nap liya usko.
Rishi Sunak to khud bechare mushkil mein hain. Wo keh rahe hain ki apni seat khud hi haar jayenge.
Haan, haar jayenge apni khud ki seat. लेकिन और हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, और जो हमारी प्रिडिक्शन होती है वो तो कभी गलत होती नहीं है। कल जैसे हमने कहा था फिर से साउथ अफ्रीका जो है वो जीतेगा, तो वो जीत गया। हैं पहन हमारी तो हमारी प्रिडिक्शन है कि ऋषि सुनक साहब हारेंगे, कंजर्वेटिव पार्टी हारेगी, लेबर पार्टी आएगी, उसको मुश्किलें तो होंगी लेकिन लेबर पार्टी जीतेगी दफा इंडिया इंडिया में नहीं इंग्लैंड में
इंग्लैंड
में इंग्लैंड में ठीक है
चलिए
भैया ये हमारी प्रिडिक्शन है ठीक है
जी
खुश हो आप मजे से
हो गया जी।
अच्छा ये जो है आप किस चक्कर में ये अभी तक आप आमिर की तरह सोग मना रहे हो काले कपड़े पहन के आ रहे हो और आपकी टीम के मेंबर तो पाकिस्तान भी पहुंच रहे हैं अब
हाँ
तो आप इतना गम क्यों मना रहे हो काले कपड़े क्यों पहन के आ रहे हो
तो जब होता है पहली दूसरी दफा का ऑल ऑफ अ सडन कोई सरप्राइज झटका लगे कोई झटके की बात ही नहीं है तो देख लिए मेरे मेपल लीफ को हमारे साथ चले ब्लू जेस को देख लें
वो आपका घुस के मार आ रहा है ना वो खेलेगा जो उसके साथ वो क्या गुजमन
गुजमन
गुजमन घुस के मार हम तो उसको घुस के मार जिसका मुकाबला जो है वो रेड जो लाल जुराबे उनके साथ है
और कुछ नहीं मिला उनको लाल जुराबे
लाल जुराबों के साथ मैच है
नाम
है कोई
मैं उनको इतने अच्छे अच्छे नाम देता माजिद जमाल
हाँ ईगल देता देखें ईगल
हाँ जी
है चांद सितारे मून फ्लावर्स ये देखो ये क्या है ये लाल जुराबे उनके और वो भी घुस के मारने करना उनके साथ मुकाबला
गद्दी जुराबे
हाँ गद्दी बू
हमारे नेपल हमारे ब्लू जेस को हरा
नीले जेब
दो गेम हरा दिए
हाँ हाँ देखो
जीत का जीतता आखिरी वक्त में हार गया
तो वो क्या कर रहा है आपका घुस के मार जो है
अभी आज करेगा ना जो कुछ
आज करेगा
आज करता है उसने आज जीत जाएंगे
आज जीत जाएंगे तो फिर आपने काले क्यों लगाए हैं कपड़े
काले कपड़े कौन काले कपड़े तो ऐसे ही पहने फैशन है ये
गम का इजहार नहीं है ये
आपको आपको फैशन का पता नहीं है
नहीं नहीं मुझे फैशन मुझे उसी तरह फैशन नहीं पता जिस तरह अभी आपने कहा शादियां मलिक आएंगी सारी दुनिया की आपको नॉलेज देंगी नॉलेज नहीं होता नॉलेज होता है कितनी दफा मैंने आपको बताया आपको कुछ समझ आ रही है
देख ले
हाँ
देख ले आप
कुछ नहीं सीख रहे आप मेरे से
सीखने को कुछ हो तो सीखे ना
बड़े अफसोस की बात है मुझे इतनी नॉलेज दी है मैंने आपको
मुझे ही बड़ा
अफसोस अफसोस बेशक होता रहे लेकिन आप खुशकिस्मत बहुत हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं ना माजिद भाई खुशकिस्मत आप बहुत
देख लें बस अब
आप अपनी खुशकिस्मती देना रोज जाके दो नफल पड़ा करो झुकना
अच्छा अच्छा अच्छा
है
ठीक है
बट चलो ठीक है चलो फिर जी अभी अपनी कड़ियां पा लेने ठीक है माजिद भाई अच्छा जी दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय चांदनी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल इसमें आपको पता ही है 1400 पीपल प्लस टाई वो तो आपने बुलाने हैं देखो ना आप यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं बार बार बताना जो है अच्छा नहीं लगता है जी तो वो आपने बुलाने हैं और अगर आपको आपका फैमिली का या आपका कॉर्पोरेट इवेंट करना है तो आप इसके खूबसूरत प्यारे तरीन 32 रूम लग्जरी होटल है इसके अंदर आप अपने इवेंट्स कर सकते हैं इनका नंबर है 6479653823 और ओंटारियोज लार्जेस्ट पाकिस्तानी हलाल बफे विलेज टेस दो इनके रेस्टोरेंट्स हैं एक है मिसेस सागा में और एक है ओकविल में तो आपको जिधर भी बैठ के खाना खाना है या ऑर्डर डालना है तो आप इनको कॉल कर लें ठीक है जी अगर आपने मिसेस सागा में कॉल करना है तो आप इनको कॉल करें एट 905-232-3663 और अगर आपने ओकविल में कॉल करनी है तो आप इनका नंबर मिलाएं 905-226-2294 ठीक है जी और जनाब राजा ते बादशाह जी बड़े मौजा दे विच खुद ने थानू भी मौज करा सकते हैं अगर आप इनके पास चले जाएंगे होम और ऑटो इंश्योरेंस लेने के लिए ठीक है फिर मौजा ही मौजा आप इनके पास जाएं राजा बादशाह जी जो है ऑल स्टेट के साथ काम करते हैं और कहते हैं मैं आपके ढेर सारे पैसे बचाऊंगा और आपको राइट कवरेज दूंगा इनका नंबर है 6472903773 ठीक है जी ये इनके नंबर आप याद रखें ओके जी माजिद भाई नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टॉल्टनबर्ग वो जनाब आज पहुंचे हैं ओटावा में ओडावा क्योंकि इसको बहुत सारे लोग ओटावा भी कहते हैं नहीं भाईजान ये ओटावा नहीं है वर्ड ओडावा है तो वहां पे पहुंच चुके हैं और इनकी मेल मुलाकात जाहिर है कि हमारे जंती टूडो के साथ हुई है और लेटर इन द इवनिंग जो है इनका नेटो एसोसिएशन ऑफ कनाडा जो है उन्होंने इनको दावत दी है तो वहां पे भी ये एक स्पीच करेंगे ये लास्ट टाइम कनाडा के अंदर आए थे अगस्त 2022 को और इस वक्त जो आए हैं इनका जो मेन स्ट्रेटेजिक फोकस जो है वो दो चीजों पर रहेगा एक तो फोकस रहेगा ऑप्टिक के ऊपर उस वक्त भी था लेकिन अब जरा ज्यादा हो गया है क्योंकि ये हाईलाइट किया है कनाडा ने अपनी नई डिफेंस स्ट्रेटजी जो है उसके अंदर उसकी वजह यह है कि इलाके की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उसकी अगेन वजह यह है कि स्वीडन और फिनलैंड जो कि बिल्कुल यूरोप में होने के बावजूद नेटो का हिस्सा नहीं थे नेटो का हिस्सा बन गए हैं तो ऑप्टिक की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है नेटो के जो अब लीडर्स हैं डीसी में नेक्स्ट मंथ में मिलेंगे टू मार्क नेटो 75th एनिवर्सरी तो उधर भी इनके जो फोकसेस हैं मोर और लेस ये रहेंगे। आज भी जो इनकी बातचीत हुई है ट्रूडो साहब की और इनकी यूक्रेन की वॉर के ऊपर, और वो जो वहां पे नेक्स्ट मंथ भी समिट होने वाला है उसमें भी यूक्रेन की वॉर रहेगा, जाहिर है कि मिडिल ईस्ट का मसला तो नहीं भुलाया जा सकता, तो उसके ऊपर भी इनकी बातचीत रहेगी। तो कनाडा की आज बड़ी खबर ये है। इसके अलावा जनाब ऑन्टेरियो की कोर्ट जो है वो सुनेगी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ने जो एक अपील डाली है, और उसमें उन्होंने कहा जी कि हमारे जो कैंपस के ऊपर इन्होंने एनकैंपमेंट किया हुआ है प्रो पैलेस्टीनियन, इसको खत्म करने की जरूरत है। ये लास्ट मंथ से चल रहा है और हमने बड़े दिनों से इनको प्रोटेस्टर्स को कहा हुआ है कि ये डिसमेंटल करें। यहां पे किंग्स कॉलेज सर्कल से इन्होंने ये सेटअप किया था May 2 को, लेकिन ये यहां से बिल्कुल हटा नहीं रहे। पार्टिसिपेंट जो है ये जो प्रोटेस्टर्स हैं स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जिस वक्त तक स्कूल हमें बताएगा नहीं कि वो कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है उन कंपनीज में जो कि प्रॉफिट करती हैं, जिससे कि इसराइल प्रॉफिट करता है और फिर उसको यूज करता है गाजा के अगेंस्ट, और जितने भी इजरायली एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ जब तक अपने टाइज कट नहीं करेंगे हम ये कैंपेन नहीं हटाएंगे। स्कूल ने इससे पहले भी पुलिस को बुलाया था और उनको कहा था कि इनको हटाओ, लेकिन ये जो है बहुत ज्यादा क्योंकि इररिपेरेबल हार्म कर रहे हैं यूनिवर्सिटी को और ब्लॉक कर रहे हैं यहां पे इसको प्रॉपर्टी को, तो इनको हटाने की जरूरत है। इसके ऊपर स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने कहा था जी कि हम बिल्कुल ना तो प्रॉपर्टी को हम हार्म कर रहे हैं ना ही हम कोई इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम बिल्कुल नॉन वायलेंट हैं। यूनिवर्सिटी ने जो कोर्ट के अंदर पेपर्स दिए हैं उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि ये एनकैंपमेंट जो है इंतहाई वायलेंट और एंटी सेमेटिक है। प्रोटेस्टर्स ने कहा जी कि ये सारा हेयर से है, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, और ये जो है हमारा राइट है अंडर फ्री एक्सप्रेशन एंड पीसफुल असेंबली, हम जो है प्रोटेस्ट कर सकते हैं और हमने कोई किसी को ना नुकसान पहुंचाया है और ना ही हमने कोई एंटी सेमेटिक नारे मारे हैं। तो अब ये दोनों साइडें जो हैं ये डटी हुई हैं, तो अब इसमें जो है एनकैंपमेंट कैसे खत्म होएगा ये जो है बड़ी बात। लेकिन इसके बीच में ये जो एनकैंपमेंट्स जो अमरीका में किए थे बच्चों ने बेचारों ने, उनको तो ये डिग्रियां नहीं दी गई, उनके खिलाफ तो बड़े एक्शन लिए गए हैं। तो ये बड़े बहादुर बच्चे हैं भाई जो अभी तक करके बैठे हुए हैं क्योंकि उनकी लाइफ उन्होंने स्टेक पे डाली हुई है। स्टैट्स कनाडा की आज ही बहुत बड़ी खबर आई है मजिद भाई, पाकिस्तान का असर इन पे हो रहा है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है यहाँ पे है जी, 41 मिलियन को अब हम टच कर रहे हैं, वाह 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 क्या बात है जी, यानी कि कराची और उसके आसपास के गांव इतनी हो गई है इनकी आबादी, तो 41 मिलियन हो गई है जी फर्स्ट क्वार्टर में, और ये ग्रो किया 0.6% से। इसमें वो कहते हैं जी कि April 1 को जब हमने देखा था तो हमारी पॉपुलेशन 41 मिलियन को टच कर रही थी, और उसकी वजह ये है कि जो फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ 2024 थे उसके अंदर कैनेडा में आए थे कोई जो है 242,673 के करीब इमिग्रेंट्स, और जो हमारा नेट इमिग्रेशन था 12,613 रहा फर्स्ट क्वार्टर में। इन्होंने कहा जी इसके अंदर 131,810 जो थे नॉन परमानेंट रेजिडेंट्स थे, और इमिग्रेशन जो है वो उस वक्त ग्रो की और इसकी अनाउंसमेंट और जो हमने ये सारे जो डाटा कलेक्ट किया है उससे पहले कि जब कैनेडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि अब थोड़ा हम कैप लगाएंगे इमिग्रेशन के ऊपर, तो अब शायद जो है इसके बाद ज्यादा इमिग्रेशन में जोर ना आए, लेकिन अभी तक की जो खबर है वो ये है कि जो इमिग्रेशन अभी तक हुई है उसकी वजह से पॉपुलेशन में बढ़ोतरी हुई है। यॉर्क रीजनल पुलिस जो है उसने तकरीबन जी $2.5 मिलियन वर्थ ऑफ ड्रग्स कैश लग्जरी कार्स और फायर आर्म्स पकड़े हैं आफ्टर 14 मंथ्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन टारगेटिंग क्रिमिनल गैंग्स। 20 लोगों को इसमें चार्ज किया है अंडर द इन्वेस्टिगेशन दैट वाज डब्ड प्रोजेक्ट लुकआउट, और इसके अंदर उन्होंने टारगेट किए थे ड्रग्स को और गन्स को। ये एक ज्वाइंट फोर्सेस ऑपरेशन था जो कि फॉर्म किया गया था अप्रैल 2023 में, और इसमें इन्वेस्टिगेटर्स जो थे वो यॉर्क टोरंटो पील ओपीपी सीबीएसए फिनट्रैक के ऑफिशियल थे। इसके अंदर 200 लोग जो थे 200 पुलिस ऑफिसर्स इसके अंदर इन्वॉल्व थे, और इन्होंने वारंट्स जो थे निकाले थे 33 लोकेशंस में जीटीए में ऑन March 5। इसमें 295 चार्जेस जो हैं इनके ऊपर लगाए गए हैं जो अरेस्ट हुए हैं लोग, और ड्रग्स जो थी ये इंक्लूड करती थी 19.8 किलोग्राम्स कोकेन, 4.8 किलोग्राम्स कैनबिस क्वांटिटी ऑफ एमडीएमए जैनेक्स पिल्स और ऑक्सीकोडोन पिल्स जो थी वो इनको मिली थी। तो ये भी आज वो कहते हैं जी बहुत बड़ी हमारी जीत है। इसके साथ साथ जो वेस्ट जेट ग्रुप है उसने अपनी 40 के करीब जो फ्लाइट्स हैं उनको कैंसिल किया है, और ये 40 इसलिए उन्होंने कैंसिल किए हैं क्योंकि वो कहते हैं जी कि तकरीबन जो है वो इनके जो 670 मैकेनिक्स रिप्रेजेंटेड बाय एयरक्राफ्ट मैकेनिक्स फ्रेटर्नल एसोसिएशन जो है उन्होंने कहा है कि कल से थर्सडे से ये स्ट्राइक के ऊपर जा रहे हैं। वेस्ट जेट ने कहा जी कि इसकी वजह से 6500 ट्रैवलर्स जो हैं वो अफेक्ट हुए हैं, और वो कहते हैं जी कि हम इसलिए हमने ये अनाउंस कर दिया ताकि हम अपने एयरक्राफ्ट को सेफली और ऑर्गेनाइज तरीके से पार्क कर सकें, और ट्रैवलर्स को भी इसीलिए हमने पहले बताया है, और हमने ये नोटिस जो हमें मिला था अर्लियर दिस वीक इनसे तो उसके बेस पे हमने ये किया है। अब एयरलाइन जो है उसने कैनेडियन इंडस्ट्रियल रिलेशंस बोर्ड को कहा है कि आप इंटरवीन करें, और वो कह रहे हैं जी कि हम उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं, और अगर ये एक्सेप्ट इन्होंने कर लिया तो फिर ये जो डिस्प्यूट है इसको आर्बिट्रेशन की तरफ लेके जाया जाएगा और लेबर एक्शन यानी कि स्ट्राइक जो है उसको बंद किया जा सकेगा। तो ये जो ना बड़ी आज अफसोस की खबर है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है बेचारे इफेक्ट हुए हैं। रॉयटर्स की आज ये खबर आई है जी, और इसके मुताबिक बाइडन साहब माशाल्लाह देखो जी 81 इयर्स के हैं और इलेक्शन ट्रेल पे हैं, बड़े लग रहे हैं जरा बिल्कुल ठीक ही लग रहे हैं। तो बाइडन साहब जो है उन्होंने आज अनाउंस किया है कि सिटीजनशिप जो है वो बहुत सारे अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स जिनकी के शादियां यूएस सिटीजन्स के साथ हुई हुई हैं उनको दिया जाएगा। व्हाइट हाउस के अंदर एक इवेंट हो रहा था और उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा ट्रंप साहब भी जनाब देखो 78 इयर्स के हैं, बस 2 साल ही छोटे हैं इनसे के 3 साल छोटे हैं, 3 साल छोटे हैं इनसे, तो उनको बड़ा उन्होंने क्रिटिसाइज किया और उन्होंने कहा जी कि इन्होंने यूएस मेक्सिको बॉर्डर के ऊपर जो है फैमिलीज को सेपरेट किया था और बड़ी भद्दी किस्म की लैंग्वेज भी यूज की थी और एक्यूज किया था कि ये पॉइजनस ब्लड जो है ये लोग यूएसए के अंदर लेके आ रहे हैं। वो कहते हैं जी मैं बिलीव नहीं कर सकता कि कोई इस तरह की बात ऐसे कर सकता है, इट इज एब्सोल्यूटली आउटरेजस। लेकिन वो कहते हैं जी कि मैं इसके ऊपर कोई पॉलिटिक्स वगैरह नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ जो है ये चीजों को फिक्स करना चाहता हूं, लेकिन असल में तो बात यह है कि इनके जमाने में जो है बहुत ज्यादा माइग्रेशन जो डिटेंशन सेल्स बन गए थे बॉर्डर के ऊपर विद मैक्सिको, उसके अंदर बहुत ज्यादा इनके टाइम के बीच में जो ये 4 साल अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं तो उसमें देखा गया। तो अब मे बी ये वाकई फिक्स करना चाहते हैं इन चीजों को। तो वो कहते हैं जी कि ये प्रोग्राम जो है ओपन किया जाएगा 500,000 स्पाउसेस के लिए जो कि यूएस में रहते हैं और रह रहे हैं पिछले 10 साल से एज ऑफ जून 17, और इसमें जो 50,000 किड्स अंडर 21 हैं विद यूएस सिटीजन पेरेंट वो भी एलिजिबल होंगे अपने पेरेंट्स के पास आने के लिए। तो ये जो है आज एक मेजर खबर देखी गई है। नैन्सी पेलोसी स्पीकर ऑफ यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स उन्होंने आज बहुत ज्यादा एतराज किया है चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के ऊपर क्योंकि वो पहुंची हुई हैं हिमाचल प्रदेश के तिब्बत के एरिया के अंदर जहां पे कि उनकी मुलाकातें जो हैं वो दलाई लामा के साथ हुई हैं, और उन्होंने कहा जी कि चाइना चाहे जितनी मर्जी कोशिशें कर ले ये जो दलाई लामा की लेगेसी है इसको खत्म नहीं कर सकेंगे, जो तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर हैं और धर्मशाला में अब रहते हैं। उन्होंने कहा जी कि इनका जो नॉलेज और ट्रेडिशन और कंपैशन और प्योरिटी ऑफ सोल और लव है और इनकी जो लेगेसी है वो हमेशा रहेगी, और प्रेसिडेंट शी को उन्होंने कहा कि तुम जो है प्रेसिडेंट शी तुम नहीं रहोगे और कोई भी तुम्हें किसी चीज के लिए भी क्रेडिट नहीं देगा। ये आज बात कर रही थी एट एन इवेंट होस्टेड बाय कैनेडियन तिब्बत जो एडमिनिस्ट्रेशन है सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने किया था। पेलोसी जो है वो एक बहुत ही हाई प्रोफाइल एक यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के डेलीगेशन का हिस्सा है जो कि आज जिन्होंने मुलाकातें की दलाई लामा के साथ उनके घर पे। इससे पहले जो यूएस कांग्रेस थी उसने आपको पता ही हमने कल बताया था कि उसने एक बिल पास किया है रिजॉल्व टिबेटियन एक्ट जिसमें कि उन्होंने कहा है कि हम इन लोगों को जो है टिबेटियंस को दलाई लामा को फंड करेंगे और चाइना को कहा है कि इनके साथ बात करें विदाउट एनी प्री कंडीशंस और ये जो आपके बीच में लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट है इसको हल करें। इन 2022 भी जो पेलोसी थी वो एक डेलीगेशन ताइवान लेकर गई थी और उसकी वजह से भी चाइना के बहुत सारे इनके साथ ताल्लुकात खराब हुए थे। कल भी हमने आपको बताया कि इस डेलीगेशन के आने पे चाइना ने बहुत ज्यादा एतराज किया है। तो एक तरफ ये इनके रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं और कहते हैं जी हम ताल्लुकात चाइना से अच्छे करना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये ताइवान का पहले और अब ये टिबेट का जो किस्सा है ये इसको लेके बैठ गए हैं, तो ये जाहिर है चीजें और ज्यादा खराबी की तरफ जाएंगी। बाइडन साहब ने ट्रंप साहब के बाद वैसे तो कोशिश की कि चाइना के साथ ट्राइज को अच्छा किया जाए, लेकिन इस तरह की हरकतों से जाहिर है कि चाइना कहता है कि चीजें जो है बिल्कुल ठीक नहीं हो सकेंगी। तकरीबन तमाम ही जो यूएस प्रेसिडेंट्स आते हैं वो दलाई लामा से मिलते हैं एक्सेप्ट फॉर ट्रंप, और अब बाइडन साहब भी, ये तो जो है दो प्रेसिडेंट्स हैं जिनकी अभी तक दलाई लामा से मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन पिछले 30 सालों में तमाम अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ने इनके साथ की है मुलाकात। इन्होंने तिब्बत छोड़ दिया था 1959 को और फिर ये धर्मशाला में इंडिया में आके बस गए थे, तो उसके सिलसिले में जो थे ये डेलीगेशन इनके साथ मिल रहे थे। हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं विक्टर ऑर्बन, उन्होंने कहा जी कि मैं बैक करूंगा मार्क रुटे को टू बिकम द नेक्स्ट नेटो हेड जो है, और लेकिन उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल रिटर्न में तुम मुझे लिख कर दो कि हंगरी जो है बिल्कुल किसी किस्म की हंगरी के से हेल्प नहीं मांगी जाएगी, ना तो मिलिट्री ना इन पर्सन फॉर यूक्रेन जो है। इससे पहले आपको पता है कि नेटो ने इनको कहा था कि जी आप जो है इनको करें मार्क रुटे साहब को, ये जो डच प्राइम मिनिस्टर थे, इनको आप डेनमार्क को नेटो का हिस्सा बनने दें, तो इन्होंने कहा था कि नहीं, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं और बड़ी मुश्किलों से फिर ये जब सारी चीजें हल हुई थी तो उसमें उन्होंने कहा था जी कि जो है मैं जो है अब आपका जो नेक्स्ट प्लान है उसमें मैं आपके साथ प्लेज करने को तैयार नहीं हूं, यानी कि जो यूक्रेन के लिए बेतहाशा हेल्प है, क्योंकि आपको पता है कि हंगरी जरा ज्यादा अलाइन करता है पुतिन साहब के साथ, रशिया के साथ ज्यादा करता है। तो अब विक्टर ऑर्बन साहब जो हैं उन्होंने मार्क रुटे को कहा कि भाई मैं अगर तुम्हें बैक करूंगा तो तुम फिर जो है वो एज नेटो के सेक्रेटरी जनरल मुझे प्रेस नहीं करोगे, क्योंकि जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टॉल्टनबर्ग हैं वो रिजाइन वो अब जो है वो हट रहे हैं अपनी पोस्ट से अक्टूबर के अंदर, और उनकी जगह पे जो रिप्लेस करना था उसके लिए डच प्राइम मिनिस्टर ने ख्वाहिश जाहिर की थी। इनकी मुलाकातें जो हैं सारे ये जो हैं नेटो के मेंबर्स वाशिंगटन में जुलाई 9 से 12 के बीच में होंगी, जिसमें कि मैंने अभी आपको जैसे बताया था कि नेटो के 75th एनिवर्सरी ये लोग मनाना चाहते हैं वहां पे, तो वहां पे ये इकट्ठे होंगे। लास्ट टॉक्स जो थी इनकी बुडापेस्ट में हुई थी, और उसके बाद जो था हंगरी ने कहा था कि मैं आपको प्लेज दूंगा अगर आप मुझे ओब्लाइज नहीं करेंगे यूक्रेन की हेल्प करने के लिए। तो आज ये जो बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल था इनके रास्ते में से डच प्राइम मिनिस्टर के रास्ते से, ये अब हट गया क्योंकि ऑर्बन साहब अब अग्री कर गए हैं। हेड ऑफ लेबनान हिजबुल्ला जो है हसन नसरल्ला, उन्होंने आज वार्निंग दी है इसराइल को कि अगर तुमने ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की वॉर को, लेबनान के अंदर आने की कोशिश की, तो फिर हम किसी रूल को फॉलो नहीं करेंगे। आपको पता ही है कि अक्टूबर 7 के अटैक के बाद से जो ये जो लड़ाई शुरू हुई हुई है हमास और पैलेस्टाइन की, उस वक्त से जो है हिजबुल्ला भी इनके ऊपर इसराइल के ऊपर कोई ना कोई बीच में से अटैक करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी कि अगर इन्होंने, क्योंकि इन्होंने अलेज किया है हिजबुल्ला ने कि इसराइल ने उनके बहुत सारे कमांडर्स और लोगों को मारा है, तो आज टेलीवाइज्ड एक उन्होंने अनाउंसमेंट में कहा कि हम जो है ना सिर्फ तुमको बल्कि मेडिटेरेनियन सी को भी हम टारगेट करेंगे, यानी कि अगर जो तुम्हारे शिप्स वहां से गुजर रहे होंगे तो उनको भी हम करेंगे। इसके अलावा उन्होंने साइप्रस को भी कहा है कि बिल्कुल इन तमाम चीजों से, इस लड़ाई से दूर रहो वरना तुमको भी हिट किया जा सकता है। ये क्रॉस बॉर्डर जो है फायरिंग ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और इसी सिलसिले में मैंने आपको बताया था कि जो अमरीका है वो काफी परेशान है और अपने लीडर्स को भी उन्होंने कुछ को भेजा हुआ है मिडल ईस्ट में कि इस वॉर को रोका जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि गाजा में वॉर रुक जाए और फिर लेबनान के अंदर जो है वो शुरू हो जाए। तो हिजबुल्ला ने आज जी इनको दी है वार्निंग दी है। अल अरबिया का एक इंटरव्यू लिया है रिज खान साहब ने, पैलेस्टीनियन एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशंस हैं रियाद मंसूर उनके साथ, और उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं कि भाई ये जो आपका मसला चल रहा है पैलेस्टाइन और इनका जो है इसके साथ इसराइल के साथ, उसके ऊपर आप क्या बातचीत करना चाहते हैं। काफी लंबा ये इंटरव्यू है, काफी उसमें बातें की हैं कि जो हमास ने हॉस्टेजेस पकड़े हुए हैं उनको कैसे छोड़ा जाए, आप उसको किस नजर से देखते हैं, और लेकिन मेन जो इसके अंदर बात की गई है वो पैलेस्टीनियन स्टेटहुड के बारे में की गई है। तो रियाद मंसूर साहब जो है उन्होंने कहा जी कि सिर्फ यूएस जो है हमारा पैलेस्टीनियंस का राइट टू लीगल राइट, बल्कि उन्होंने कहा जी लीगल राइट टू स्टेटहुड जो है उसके रास्ते में रोड़े अटका रहा है, और तकरीबन सारी दुनिया ही इस फेवर में है कि एक पैलेस्टीनियन स्टेट जो है उसको कायम किया जाए। तो ये जो यूएस है लेकिन उसके रास्ते में खड़ा हुआ है। वो कहते हैं चाहे कंट्रीज हो यूरोपियन यूनियन के कुछ, चाहे वेस्ट में है, चाहे ईस्ट में है, चाहे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, चाहे करेबियन में है, अफ्रीकन्स हैं, एशियंस हैं, सब ये रिकग्नाइज करते हैं कि पैलेस्टाइन की एक स्टेटहुड की तरफ उसको जाना चाहिए। सिर्फ यूएसए जो है कॉन्स्टेंटली ये जो बिड है इसको ब्लॉक कर रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं यूएसए से कि इसके अंदर कितनी लॉजिक है। तो ये जो है काफी गर्मा गर्म जी इनका इंटरव्यू गया। सीबीएस जो है जी उसकी आज एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग न्यूज है, और उसके मुताबिक जो मैकडॉनल्ड्स था उसने इंट्रोड्यूस किया था एआई असिस्टेड ऑर्डरिंग सिलेक्ट रेस्टोरेंट्स के ऊपर, लेकिन फिर वो एआई जो है इट वेंट बैड और उसने तमाम ऑर्डर्स जो हैं वो मिक्सअप कर दिए। तो इसकी वीडियो जो है कभी काफी वायरल हुई ऑनलाइन में। तो जब वायरल हुई तो इनका जो ये जो सिस्टम था 100 आउटलेट्स का, जिसने कि ये टेक्नोलॉजी एम्ब्रेस की थी, उसको जिसने ये सारा कुछ किया था ताकि अपने लेबर कॉस्ट कम कर सके, उसको ये सब फिर एआई सिस्टम खत्म करना पड़ा। ये इन्होंने सिस्टम लॉन्च किया था मैकडॉनल्ड्स ने विद द हेल्प ऑफ आईबीएम। आपको पता ही है बहुत बड़ी कंपनी है, एट सिलेक्ट ड्राइव थ्रूज इन यूएस इन 2021। तो मैकडॉनल्ड्स यूएसए ने ये सारी खबरें सुनने के बाद कहा है कि हमारी ये जो पार्टनरशिप है आईबीए के साथ हम इस वक्त के लिए एंड कर रहे हैं, और ये तमाम की तमाम टेक्नोलॉजी जो है अपने रेस्टोरेंट्स में से खत्म कर रहे हैं, और बाय जुलाई 26। लेकिन ये जो हमने ट्रायल अबॉर्ड किया इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें हम और फर्दर एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे। एआई जो है उसके एक्सपेरिमेंट्स हम करते रहेंगे और सॉल्यूशंस हम ढूंढते रहेंगे ताकि फ्यूचर में अपने जो रेस्टोरेंट्स हैं उसमें इसको अप्लाई कर सके। लेकिन पयान गलती हुई है कि इफ एआई गोज रॉन्ग तो फिर तो बड़ा गदर होने वाला है आपके रेस्टोरेंट्स पे। तो पयान अकल के नाखन लो, हर जगह से बंदे ना हटाओ, कोई कोई जगह से आप हटा सकते हैं। तो ये जी हुआ है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये स्टोरी थी। आई थॉट आई शुड जस्ट यू नो शेयर विद यू। द गार्डियन की आज ये स्टोरी है जी, और वंस अगेन जो प्रोसिक्यूटर्स हैं यूएसए के अंदर उन्होंने बहुत ज्यादा गंभीर किस्म के चार्जेस लगाए हैं 24 लोगों के ऊपर फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। और वो कहते हैं जी कि ये सारे का सारा शेडी काम जो है इसके अंदर चाइना इन्वॉल्व है, और चाइनीज बैंक्स और उनके ऑफिशियल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, और ये जो मेक्सिको का सिनालॉग ड्रग कार्टल है इसके साथ ये मिलके काम कर रहे हैं और इनके लिए मनी लॉन्डर कर रहे हैं। अगेन ये बहुत ही संगीन किस्म के इल्जाम है जो कि आज यूएस ने लगाए हैं। अभी तक चाइना का इस पे जवाब नहीं आया, अब आएगा तो हम आपको बताएंगे। इन्होंने कहा जी कि ये सारी की सारी ये जो इन्होंने पकड़ी थी कोई 50 मिलियन US डॉलर के करीब जो पैसे थे इन ड्रग ट्रैफिकिंग जो कि जनरेट किए गए थे बिटवीन 2019 एंड 2023। इसके अंदर यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा कि ये बहुत ज्यादा ड्रग ट्रैफिकर्स जो हैं एडवांटेज ले रहे हैं और ये यूएस डॉलर्स कमा रहे हैं, और चाइनीज सिटीजन्स जो हैं उनको ये इस्तेमाल कर रहे हैं इनफॉर्मल चैनल्स यूज करते हुए, और ये सारे अपने ट्रांसफर्स और ट्रांजेक्शन कर रहे हैं मनी की। ये लोग जो है वो कहते हैं जी कि जो मेक्सिकन सिनालॉग सिनालोआ जो ड्रग कार्टल है ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दुनिया में बहुत बड़ी तादाद में कोकेन, मेथ और मनी लॉन्ड्रिंग भी इसके साथ करते हैं। अभी तक इन्होंने सीज किए हैं 5 मिलियन US डॉलर्स के नारकोटिक्स जो हैं प्रोसीड्स, और उसके अंदर 137 किलोग्राम कोकेन, 42 किलोग्राम मेथ, 3000 एक्सटेसी पिल्स जिनकी के कीमत जो है मिलियंस में है इन यूएस। तो वो कहते हैं जी कि ये चाइना इसके अंदर इसके बैंक्स जो है इन्वॉल्व है। हूं पायान ये तो अब देखे ना, जैसे अब मक्खी भी मरती है तो इंडिया में, तो वो कहते हैं पाकिस्तान ने मारी है। तो अब जो भी कुछ दुनिया में क्राइम हो रहा है आप यूएसए वाले भी कह देते हैं कि ये चाइना ने किया है। पायान अपने बंदे आप भेजते रहते हो 24 घंटे, वो येलन मैडम जो है 24 घंटे आपकी प्यार के खत लेके जाती है चाइना, और चाइनीज जो है मासूम उनको कहती हैं हम उनसे दोस्ती करो, वो कहते हैं वो मान जाते हैं फौरन, वो मासूम मान कहते हैं हाँ ठीक है हम दोस्ती को तैयार हैं। जैसे ही आप अमरीका आते हो आप अपने सुर बदल लेते हो, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड, लेते हैं ये व्हाट इज दिस, ये आई डोंट लाइक इट अंकल सैम, ये आप जरा अपनी आते ठीक करो, आपकी हरकतें ठीक नहीं है आजकल है। तो ये हर वक्त चाइना के साथ लड़ाई, हर वक्त चाइना के साथ लड़ाई, व्हाट इज दिस, ऐसे ठीक नहीं है। अच्छा जनाब, टीडीपी के लीडर जो है अब्दुल मन्नान साहब, जिनको के हकीमुल्ला था जिनका के असल नाम, उनको मार दिया गया है कुनूर के एरिया में, जो असदाबाद डिस्ट्रिक्ट में था अफगानिस्तान के अंदर, और ये जो है अफगानिस्तान का नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस है। ये टीटीपी के जो मालाकंड शूरा है उसके ये मेंबर थे, और पाकिस्तान के अंदर बेशुमार टेरर एक्टिविटीज के अंदर ये इन्वॉल्व थे, जिसमें के टारगेट किलिंग, लैंडमाइन ब्लास्ट इन बाजोड़, फायरिंग एट सिक्योरिटी फोर्सेस एट चेक पोस्ट, एक्सटॉर्शंस, उसके अंदर ये इन्वॉल्व थे। ये राइट हैंड मैन थे टीटीपी के लीडर अजमतुल्ला महसूद के, और इन्होंने जो टीडीपी थी वो ज्वाइन की थी 2007 में। इनके भाई जो हैं तारिक अलियास असद, वो भी टीडीपी के साथ रिलेटेड हैं, और ये टेररिस्ट अटैक्स जो हैं कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान के अंदर करते हैं। इनके जो अफगानिस्तान के जो टेररिस्ट हैं, इनके हाइड आउट्स हैं कुनूर, नूरिस्तान, पक्टीका, खोस्त के अंदर और दूसरे इलाकों के अंदर। ये जो ऑपरेशन आज किया है, ये किया है एक वीक के बाद जब एनफोर्समेंट एजेंसीज ने एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया था कि टीटीपी वाले जो हैं वो अटेम्प्ट कर रहे थे कि बलूचिस्तान के अंदर अपने ऑफिस सेटअप करने के लिए, और इनको एक टिप दी गई थी, और उसके बाद फिर जो है इनको पता चला कि इनका लीडर जो है कहां पे है, क्या है, तो उसकी वजह से फिर जो है ये इसको मारा जा सका। तो उसके लिए जनाब जो है वो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज है इसको बहुत बड़ी जीत बोल रही हैं। तो अब टीटीपी कितने जोर से आएगा, फिर से हमला करेगा, ये तो अब आप खुद ही सोचें। एहसन इकबाल साहब जो हैं फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग, आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लाहौर में, और उन्होंने कहा है जी एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी कौन है भाई, यहां तुम ना ही ले लेंगे, वाई डू यू यू नो वाई यू शाई अवे फ्रॉम टेकिंग, कह दे ओ पीटी आए एडा कोई मुश्किल नाम है, एक पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने कहा एक पॉलिटिकल पार्टी चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ कॉन्स्टेंटली पिछले कई दिनों से मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही है, और ये कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात है वो सेबोटाज किए जाएं, और ट्रोलिंग कर रहे हैं, और हमारे जो हैं ऑपोजिशन के साथ बिल्कुल डिफरेंसेस हो सकते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको टारगेट किया जाए और जो स्टेट की स्टेबिलिटी है उसको जेपरडाइज किया जाए। हम जो है अपने ताल्लुकात चाइना के साथ बहुत बढ़ा रहे हैं, और अब तो इतने बढ़ गए हैं कि पाकिस्तान के जो स्पेस सेक्टर है उसके अंदर भी चाइना जो है बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आपको हमने बताई थी ये सारी स्टोरी कि पाकिस्तान कुछ अपने सैटेलाइट्स जो है वो लॉन्च कर रहा है, तो उसके अंदर डेफिनेटली वो लॉन्च पैड जो है वो चाइना के लॉन्च पैड्स यूज कर रहा है, तो उस सिलसिले में ये स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, और वो कह रहे थे जी कि हम तो सी पैक को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो ये कोई फूल ही होएगा जो हमारे चाइना के साथ रिलेशनशिप्स को खराब करना चाहता है, बल्कि हमने इनफैक्ट इनको इम्प्रूव किया है, और प्रेसिडेंट शी ने भी अभी थोड़े दिन पहले कहा था कि ये जो हमारे स्ट्रेटेजिक टाइज हैं इनको और ज्यादा आगे लेके जाने की जरूरत है, तो ये ताल्लुकात को खराब मत करो। इसके ऊपर जो है अब एक और भी न्यूज सामने आई है कि जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के इसहाक डार साहब, उन्होंने इनवाइट किया था ल्यू जियांग चाओ, मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल डिपार्टमेंट, मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी सेंट्रल कमेटी के मेंबर को, और ये अब जो है विजिट करेंगे पाकिस्तान बिटवीन जून 20th एंड 22nd, और को चेयर करेंगे डार के साथ थर्ड मीटिंग ऑफ पाक चाइना ज्वाइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑन सी पैक। इसके अंदर वो जो है फिर मुलाकातें करेंगे सीनियर सिविल और मिलिट्री जो लीडरशिप है उसके साथ भी। ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी इसको सेटअप किया गया था 2019 में ताकि दोनों जो मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बीच में एक ओपन लाइन रहे कंसल्टेशंस के लिए। इनकी लास्ट मीटिंग जो थी मार्च 19, 2019 बीजिंग में हुई थी, और उसके बाद फिर अगस्त 20, 2020 को वर्चुअली हुई थी। तो अब वो आ रहे हैं यहां पर रिव्यू करने के लिए सी पैक के प्रोजेक्ट्स और भी कि किस तरह सी पैक ने पाकिस्तान के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हिस्सा डाला है, उसको अपग्रेड किया है, और रीजनल कनेक्टिविटी जो है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, और ये जो है हाई लेवल एक्सचेंज जो है दोनों कंट्रीज के बीच में ये कॉन्स्टेंटली चलता जा रहा है। तो अब और इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, बेहतरी आएगी नहीं आएगी, क्योंकि चाइना कोई लग रहा है कोई इतना को खुश नहीं है पाकिस्तान से क्योंकि उसके जो अभी शहरी मारे थे उस लिए तो ऐसे ये जो टीडीपी के आज जो सारा हुआ है और टीडीपी के जो अटैक्स बहुत ज्यादा पाकिस्तान पे बढ़ गए हैं इसी को नजर में रखते हुए आज यूनाइटेड नेशंस का जो फोर्थ रिव्यू कॉन्फ्रेंस हो रहा था ऑफ प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑन स्मॉल आर्म्स एंड लाइट वेपन्स उसके ऊपर पाकिस्तान के जो अम्बेसडर एंड यूनाइटेड नेशंस मुनीर अकरम साहब उन्होंने कहा जी कि ये बहुत सारे जो टेररिस्ट हैं ये वेपन्स ले रहे हैं ये जो वेपन्स हैं ये टेररिस्ट ग्रुप्स के पास हैं और यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान ने कहा जी कि ये जो वेपन्स हैं ये टेररिस्ट तो नहीं बना रहे हैं तो ये किसी से सिक्योर कर रहे हैं तो ये यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स और यूनाइटेड नेशंस की जिम्मेदारी है कि वो एंश्योर करे कि ये जो इलिसिट ट्रेड और ट्रांसफर और डायवर्जन है उसको रोकने के लिए ताकि ये जो इलिसिट आर्म्स मार्केट से जो लोगों से ये उठा लेते हैं ये टेररिस्ट सारे आर्म्स इनकी कमर तोड़ने की जरूरत है क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि रीजन के अंदर टेररिज्म कर रहे हैं और ये रीजन का जो पीस है उसको खराब कर रहे हैं डिस्टेबलाइज रीजन को कर रहे हैं और ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वैसे भी ग्लोबली भी ये लोग ठीक नहीं है तो यूनाइटेड नेशंस को ये देखने की जरूरत है कि किस तरह से इन लोगों को आर्म्स लेने से मना किया जाए ये कौन लोग हैं जो इनको आर्म्स दे रहे हैं जिसकी वजह से ये पाकिस्तान में और पूरे रीजन के अंदर टेररिस्ट अटैक्स कर रहे हैं ते भाईजान हुण पता ते आई तुहानू कि कौन कौन इस दे विच ते तुसी ना ही लै लैंदे ते जरा लोगां नूं समझण विच आसानी हो जांदी बहरहाल जी उन्होंने नाम ले लिया आज जनाब केपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर साहब वो अचानक से जैसे कोई घुसता है ना हमारे मुल्क में भी दावा करता है हम घुस के मारेंगे वैसे ही आज जो है गंडापुर साहब ने घुस के मारा है डीआई खान का जो था ग्रिड स्टेशन वहां पे पहुंच गए और उन्होंने कहा जी कि ये जो इतनी बेतहाशा 20-20 घंटे की ये जो हो रही है ये लोड शेडिंग ये बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं होएगी और मैं फिक्स कर रहा हूं कि सिर्फ 12 घंटे लोड शेडिंग होएगी बिल्कुल इससे ज्यादा नहीं होएगी इसके अलावा जितने भी उनके गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं केपी के उन्होंने कहा जी कि सारा वक्त सूबे के अंदर चक्कर लगाओ और फाइंड आउट करो कि ये कैसे जो है ये इतनी ज्यादा लोड शेडिंग की जा रही है और अगर आपको शिकायत मिलती है तो मुझे बताओ इसके अलावा उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को बड़ा क्रिटिसाइज किया उन्होंने कहा जी के 1600 बिलियन रुपीस के जो ड्यूज हैं वो फेडरल गवर्नमेंट ओ करती है केपी को और जिस वक्त तक वो नहीं देगी तो हम अपने सूबे के हालात कैसे बदलेंगे उन्होंने कहा जी मैंने कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की थी फेडरल मिनिस्टर फॉर एनर्जी अवैस लगारी से लेकिन उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया इसके अलावा उन्होंने जो केपी की पुलिस है उसको कहा जी कि आपने मेरी बात सुननी है आपने वापडा की बात नहीं सुननी अगर वापडा आपको कह रहा है ज्यादा लोड शेडिंग करने के लिए तो वापडा जो है वो फेडरल अदारा है जो सूबा है वो मेरा है मुझे इमरान खान ने यहां का चीफ मिनिस्टर बनाया है और मेरी बात आपको केपी की पुलिस को केपी की के चीफ मिनिस्टर की बात माननी पड़ेगी इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने मुझे कहा था कि जिस वक्त आईएमएफ की डील आएगी तो उसमें फाइनलाइज जब होगा तो तमाम सूबों का सहमत होना जरूरी है तो आप प्लीज जो है उसके अंदर अपना सपोर्ट शो करना तो गंडापुर साहब ने कहा कि अगर केपी को उसके पैसे ना दिए और हमारा ये जो पावर लोड शेडिंग का जो मसला है इसको खत्म ना किया तो आपका आईएमएफ का डील जब मेरे पास आएगा तो मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट शो नहीं करूंगा जब तक कि आप मुझे मेरे पैसे नहीं मोड़ोगे ठीक है बहन सही है ओके जी चलो ठीक है अच्छा जनाब आज आया 4.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक इस्लामाबाद रावलपिंडी केपी के अंदर अकॉर्डिंग टू नेशनल सिस्मिक मॉनिटरिंग सेंटर इन इस्लामाबाद और इसके जो ट्रेमर्स थे वो फील किए गए पिशावर सवाद पाराचिनार मालाकंड लोअर दीर हंगू चार सद्दा स्वाबी नॉर्थ एंड सदर्न वजीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसका एपी सेंटर जो था साउथ ईस्टर्न अफगानिस्तान था और इसकी डेप्थ जो थी रिकॉर्ड की गई थी 98 किलोमीटर के ऊपर इससे पहले भी महीने के शुरू में एक 3.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था कराची और क्रिप्टन में इसका एपी सेंटर जो था 15 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट कराची में था और इसकी डेप्थ थी 22 किलोमीटर ये जिस वक्त अर्थक्वेक आया रावलपिंडी इस्लामाबाद और पिशावर में उसके थोड़ी ही देर के बाद अगेन दूसरा एक 3.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक कराची में फिर से आया तो पायन अब हरकतें कोई ठीक नहीं है आपके लोगों की तो जहर है अब अर्थक्वेक तो आएंगे तो जनाब ये बैक टू बैक दो अर्थक्वेक्स जो है उनके झटके महसूस लेकिन अभी तक ये जो खबरें आई हैं उसमें कोई लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी जो है वो रिपोर्ट नहीं किया गया आसिफ रंगून वाला पाकिस्तानी ब्रिटिश फिलंथ्रोपिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर जो हैं उनको आज कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का अवार्ड दिया गया है और ये अवार्ड उनको खुद से दिया है किंग चार्ल्स III ने। रंगून वाला साहब जो हैं ही सर्व्स एज वाइस चेयर ऑफ ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट किंग्स चैरिटी और ये इनको दिया गया है किंग की बर्थडे ऑनर्स लिस्ट जो है 2024 में उस सिलसिले में जो कि इन्होंने फिलंथ्रोपी में काम किया है यूएसए में और साउथ एशिया में स्पेशली इन पाकिस्तान। उन्होंने कहा जी कि मैं बड़ा हम्बल्ड और ऑनर्ड फील करता हूं ये मुझे दिया गया है, मैं ज्यादा इक्विटेबल कंपैशनेट वर्ल्ड क्रिएट करना चाहता हूं। हमने बहुत ज्यादा कराची के बहुत सारे इलाकों में एजुकेशन सेक्टर में काम किया है, थाउजेंड्स ऑफ अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं उन्होंने इसका फायदा उठाया है और मैं ये अपना काम जारी रखूंगा और इसके अलावा मैं और भी बहुत सारे जो ब्रिटिश पाकिस्तानी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं गवर्नमेंट को कहता हूं कि उनको भी ऑनर और रिकॉग्नाइज किया जाए। ठीक है पाए, बिग थिंग, बिग थिंग। अच्छा जनाब, हिंदुस्तान के अंदर तो वो जो बाबरी मस्जिद की अब सेट कर दी है ना एग्जांपल, अब उसके बाद तो अब बहुत सारी और भी हौले 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 जो हैं दरगाहें और श्राइन्स जो हैं उनको कन्वर्ट किया जा रहा है। आज ये जो एक और बहुत बड़ी इंडियन मीडिया के अंदर खबर है जिसको वैसे तो छुपाने की कोशिश की गई लेकिन ये सामने आ गई, ये इमाम शाह बाबा दरगाह जो गुजरात के पिराना एरिया के अंदर है, पूरी कोशिश की जा रही है कि इसको जो है कन्वर्ट किया जाए एक टेम्पल के अंदर। ये जो दरगाह है ये तकरीबन इसके बहुत सारे कोई 13 के करीब जो टॉम्स हैं इनको भी डिस्ट्रॉय किया गया है और ये जो दरगाह है ये बिलोंग करती है इमाम शाह बाबा और उनकी फैमिली से, जिनका के ताल्लुक जो है हजरत पीर इमाम शाह बाबा और ये सारे जो हैं इनका जो ताल्लुक है अरेबिया से जाके मिलता है और ये जो थे यहां पे गुजरात के इलाके में आके आए थे। ये जो पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर बाबा जी हैं, उनके 4 जो ग्रैंड सन्स ग्रैंड डॉटर उनकी कब्रें हैं और मॉस्क है और ये जो एक सैयद फैमिली है ये इसको अब यहां पे रन करती है जो कि इनके डिसेंडेंट्स हैं। ये पिराना जो है ये बड़ा वेल नोन हिस्टोरिकल विलेज है, दिस इज 18 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अहमदाबाद और कोई तकरीबन 500 साल पहले बाबा जी जो हैं वो यहां पे इमाम शाह बाबा आए थे और उस वक्त उन्होंने इस मस्जिद को क्याम किया था का क्या को बनाया था, यानी का क्याम डाला, क्या कहते हैं मजबूरी क्याम किया था यहां पे है जी। तो यहां पे फिर ये मस्जिद जो थी वो फिर गुजरात में बनाई गई थी। तो 5 सेंचुरीज जो हैं उनसे इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी बड़ी स्मूथली चल रही थी, इसके जो फॉलोअर्स हैं उनको सतपंथीज कहा जाता है और इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो सैंक्शन किया गया था सितंबर 26, 1939 में और इसको एस्टैब्लिश किया गया था अंडर द श्राइन्स ऑफ मुस्लिम पीर बाबा साहब टिल 1990। तो इसकी बगैर किसी प्रॉब्लम के एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह चल रही थी लेकिन फिर विश्व हिंदू परिषद वालों ने इसके ऊपर एक जो है वो कैंपेन लॉन्च की और उन्होंने कहा जी कि गुजरात के अंदर जितने भी मुस्लिम्स के ये वर्शिप के प्लेसेस हैं इनको खत्म करने की जरूरत है और इसके अंदर जो था ये भी जो है दरगाह भी आ गई है, क्योंकि जाहिर है कि उस वक्त जो बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया था उसकी वजह से इनके अंदर और ज्यादा फिर हिम्मत आ गई। उसके बाद इन्होंने दरगाह के जो फॉलोअर्स थे उनको टॉर्चर और हरास करना शुरू किया और हौले हौले इसको एक हिंदू टेम्पल में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई। हालांकि ये जो दरगाह थी यहां पर मुसलमान हिंदू और बाकी तमाम धर्मों के लोग आके दुआ के लिए आते थे। इन अगस्त 2023 इसमें कोशिश की गई कि इसको रीनेम किया जाए और इसका नाम दिया जाए साद गुरु हंस तेज महाराज और इसके आसपास जो हैं वो पोस्टर्स भी लगाए गए थे और फिर बहुत सारे जो हैं वो फ्लैग्स वगैरह भी दरगाह के अंदर भी और बाहर भी लगाई गई थी। जिस वक्त ये लोकसभा के भी इलेक्शन चल रहे थे हिंदुस्तान में तो यही जो हिंदू ग्रुप्स हैं उन्होंने इसका फायदा उठाते हुए 7 मई को फोर्सिबली वो दरगाह के अंदर एंटर हुए, उसकी बहुत सारा इलाका जो है उसको डिस्ट्रॉय किया और उसमें हल्लड़बाजी की और जाहिर है कि बेहुर्मती की, चप्पलों के साथ अंदर घुस जाना और गंदे तरीके से आ जाना उसकी इजाजत नहीं होती जहां पे नमाज आप पढ़ते हैं, साफ सुथरी जगह होनी चाहिए। इस सिलसिले में फिर जो थी उसकी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने एक FIR लिखवाई है लेकिन जाहिर है कि अभी तक उस FIR के ऊपर कोई भी काम नहीं हुआ है। राहुल गांधी जी जो हैं उन्होंने कहा जी कि यूपी के 2 बेटे हिंदुस्तान के अंदर सुधार लाएंगे। अच्छा जी, ये बात उन्होंने की विद हिज जो है एलआई जो है इंडिया अलायंस में एसपी के यानी समाजवादी पार्टी के जो चीफ हैं अखिलेश यादव के साथ। और ये जो है अपनी जाहिर है जब कैंपेन कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि मैं अपनी एक मोहब्बत की दुकान लेकर आ रहा हूं, जिस वक्त वो इंडिया का यात्रा कर रहे थे राहुल गांधी जी। तो हुआ यह कि यादव साहब ने इनको इनकी 54th बर्थडे के ऊपर जो है ग्रीट किया, जिसमें कि उन्होंने कहा कि अब यूपी के दो लड़के जो हैं इस मुल्क में सुधार लाएंगे। इन दोनों का जो गठजोड़ था 2017 के भी इलेक्शंस में हुआ था, लेकिन उस वक्त ये जो हैं बहुत बुरे तरीके से बीजेपी के खिलाफ हार गए थे और बीजेपी पावर में आ गई थी स्टेट में। और मोदी जी ने अब इस वक्त अपना जो लोकसभा का इलेक्शन था उसके बीच में बड़ा जी इनका मजाक उड़ाया था और कहा था ये जो दो लड़कों के ऊपर एक फिल्म बनी हुई है, ये दो लड़कों की फिल्म पिछली दफा भी फ्लॉप हुई थी और इस दफा ये फिर से इन्होंने रिलीज की है दो लड़कों की फिल्म, तो ये दो लड़कों की फिल्म अब भी ये फ्लॉप होगी। तो जो है वो, लेकिन हुआ क्या, हुआ इस दफा ये कि जो एसपी है उसने 80 में से 37 सीट्स जीती और ये हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स थी जो कि यूपी में उन्होंने जीती हैं रीसेंट टाइम्स में। कांग्रेस ने 6 सीटें जीती थी और बीजेपी ने 33 जीती थी, और बीजेपी के जो एलआईएस थे राष्ट्रीय लोक दल उसने 2 और अपना दल ने 1। तो इनकी जाहिर है कि अब सरकार एसपी की आई है तो उसके ऊपर जी इन्होंने खुशी का इजहार किया और मोदी जी के ऊपर बल्कि जाइब ली है, क्योंकि वो कह रहे थे ना कि ये दो लड़कों की फिल्म फ्लॉप हुई है, तो उन्होंने कहा जी अब ये दो लड़के ही सुधार लाएंगे यहाँ पे। तो ऐसे है, खुश हो माजिद भाई अब आप बहुत खुश हो ना, देखो मैंने आपको कितनी खुशी की खबर सुनाई। अच्छा जी, अनिल कपूर साहब जो हैं उनसे आज एक इंटरव्यू लिया गया है, क्योंकि आपको पता ही है वो अब सल्लू भाई का बिग बॉस करने वाले हैं, तो उसके सिलसिले में आजकल बहुत सारे अनिल कपूर साहब से इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। तो अनिल कपूर साहब से पूछा, उन्होंने कहा जी कि आप क्या बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं। उन्होंने कहा देखो भाई मैं तो बिल्कुल सीधी सीधी बात करूंगा, आपको रियलिस्टिक होने की जरूरत है, मैं वैसे हमेशा आई पुट माई सेल्फ इन द प्रोड्यूसर शूज और मुझे हमेशा ये होता है कि मैं लोगों की जो है वो समझ सकूं उनकी जो है पोजीशन, तो मैं समझता हूं और मैं ना तो बेतहाशा उनसे चार्ज करता हूं ना तो बहुत कम करता हूं, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जितना मैं डिजर्व करता हूं उतनी फीस तो मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि पैसा आजकल बड़ा जरूरी है और सर्वाइवल के लिए तो ये आपको चाहिए है, लेकिन अलबत्ता मेरी काफी कॉशियस एक होती है एफर्ट कि मैं ज्यादा इतने भी अनरियलिस्टिक तरीके से पैसे ना मांग लूं। और जनाब आज बड़े रेवलेशंस हुए हैं, सोनाक्षी सिन्हा का हम आपको बता रहे हैं कि जहीर इकबाल साहब से शादी हो रही है। कौन है ये जहीर इकबाल साहब? जहीर इकबाल साहब जो हैं इनके वालिद साहब जो हैं जनाब, इनके वालिद साहब इकबाल रतनसी जो हैं, उन्होंने किसी जमाने में सल्लू भाई को पहल दिए थे। क्या बात है माजिद भाई, है जी है जी। तो इन्होंने सल्लू भाई को पैसे दिए थे और इसका जिक्र जो है सल्लू भाई ने किया भी था अपने ट्विटर पे 2018 में, क्योंकि उस वक्त ट्विटर ही था, अब एक्स हो गया है। तो उन्होंने कहा जी कि एक तस्वीर भी लगाई थी ये जहीर के साथ, उन्होंने कहा था माय चाइल्डहुड फ्रेंड इकबाल और मैं इसके ऊपर, ये मेरा बैंक है और मैं अभी भी इसको 2011 रुपीज जो है मैं ओ करता हूं, तो थैंक गॉड के मुझे इसको इंटरेस्ट नहीं देना है, तो कोई बात नहीं है मैं इस बच्चे को लॉन्च कर रहा हूं तो इसका बाप थोड़े बहुत तो पैसे लगाएगा, लव द पिक्चर। तो रतन सिंह साहब जो हैं वो कंस्ट्रक्शन और ज्वेलरी के बिजनेस में हैं और जहीर जो हैं उन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू किया था नोटबुक से, जिसको के प्रोड्यूस किया था सल्लू भाई ने, और इसने वैसे भी इनके साथ एक फिल्म में काम किया था जय हो के अंदर 2014 में एज असिस्टेंट डायरेक्टर। तो ये आज कुछ बहती सामने आई हैं। नाग अश्वन की काल्की 2898 AD, इसका जो था आज प्री रिलीज इवेंट मुंबई के अंदर हो रहा था, जिसके के अंदर देखे गए प्रभास, दीपिका पाडुकोन, बिग बी, कमल हासन और जनाब राणा दगुबती। तो राणा दगुबती जो थे वो स्टेज पे अनाउंसमेंट्स कर रहे थे और फिर उसके बाद उन्होंने अमिताभ को और प्रभास को और दीपिका को स्टेज पे बुलाया। तो दीपिका चूंकि प्रेग्नेंट हैं तो जिस वक्त ये स्टेज की तरफ आई तो राणा दगुबती आगे बढ़े इनको लाने के लिए, लेकिन एकदम से प्रभास आगे और इनको स्टेज पे लेकर आए, और उसके बाद जब ये नीचे उतरने लगी तो फिर प्रभास आए इनकी हेल्प करने को इनको नीचे उतरने में, तो अमिताभ को देखा जा रहा था कि वो प्रभास को खींच रहे थे पीछे को कि और कह रहे थे भाई मुझे भी तो उसकी हेल्प करने दो, मुझे भी उसकी हेल्प करने दो। तो वहां पे जितने भी लोग फैंस और मीडिया वाले थे वो अमिताभ को देख के हंस रहे थे। ठीक है जी। और जनाब नसीम शाह और उस्मान खान और हमारे सीनियर मैनेजर, बहुत बड़े मैनेजर वहाब रियाज साहब वापस आ गए हैं पाकिस्तान में, लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आज इनकी फ्लैट जो है प्राइवेट डायरेक्ट लैंड की है फ्लोरिडा से लाहौर, और हारिस रऊफ और इमाद वसीम और आजम खान अभी तक वापस नहीं आए हैं क्योंकि उनको पता है उनको बहुत मार पड़ेगी। बाबर आजम जून 22 को वापस आ रहे हैं, हेड कोच गैरी क्रिस्टन जो है वो भी आएंगे तभी, आमिर जो है वो भी ठहरा हुआ है अभी यूएसए के अंदर और वो वहीं से चला जाएगा इंग्लैंड डर्बी शायर को ज्वाइन करने के लिए, काउंटी खेलने के लिए। केन विलियमसन ने आज अनाउंस किया कि वो न्यूजीलैंड की व्हाइट बॉल टीम्स के जो कैप्टनशिप है उससे रिजाइन कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि आई एम ऑप्टिंग आउट ऑफ द नेशनल कॉन्ट्रैक्ट फॉर 2024-25 सीजन, क्योंकि जो है वो समझते हैं कि T20 वर्ल्ड कप में जो अर्ली एग्जिट हुआ न्यूजीलैंड का शायद उनकी कैप्टनसी अच्छी नहीं थी। भाई ये इज्जत वाले लोग हैं, ये चिपके नहीं रहते पोस्ट के साथ। और न्यूजीलैंड जो है उसने सेमीफाइनल्स में पहुंचे थे, वो पिछले 3 T20 वर्ल्ड कप्स में 2021 में ये फाइनल में पहुंचे थे लेकिन इन्होंने अपना जो जीत सकते थे व्हाइट बॉल टाइटल वो नहीं जीत सके थे। इसके अलावा जो फास्ट बॉलर लोकी फर्गसन है उन्होंने भी कहा है कि वो नेशनल कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं करेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने आज सब चीजों की डिटेल्स जो दी हैं। ये जो है विलियमसन जो है वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन है और इन्होंने 350 इंटरनेशनल खेले हैं इन टेस्ट ओडीआईज एंड T20s और इन्होंने जो है कहा है लेकिन कि ये एज अ प्लेयर खेलेंगे न्यूजीलैंड के तमाम तीनों जो फॉर्मेट्स हैं उसके अंदर। और जनाब कोहली साहब जो है बेचारे उसको भी बड़ी बैशिंग मिल रही है कि जी जो ये है इन्होंने अच्छी नहीं की, आयरलैंड के खिलाफ 1 रन पे आउट हो गए, पाकिस्तान के खिलाफ 4 रनों पे और यूएसए में 0 पे ये आउट हो गए, लेकिन आज इनको बहुत ज्यादा जो है वो सपोर्ट किया है लेजेंडरी ऑस्ट्रेलियन ओपनर मैथ्यू हेडन ने और उन्होंने कहा जी कि अब ये चूंकि सारे का सारा जो है मैचेस जो है करेबियन में जा रहे हैं तो इसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है एंड ही विल डू वेल देयर और यही वक्त है जिस वक्त इसको अच्छा ये करेगा, यानी कि ये फाइनल में जो मैचेस होंगे उसके अंदर ये करेगा। वो कहते हैं जी कि ये जो कंडीशंस थी बहुत ज्यादा मुश्किल थी यहां पे अमेरिका के अंदर और ये बहुत ज्यादा वर्ल्ड क्लास ये बैट्समैन है और ये जो सेंट लुशिया वगैरह जो है यहां पे 160 से 170 का स्कोर बड़े इजीली होता है तो यहां पे अपने जो हैं कोहली जो कि अभी सिर्फ 35 ईयर्स के हैं वो अपने जो हैं रंग बखेरेंगे तो आप फिक्र मत करो। एंड उन्होंने कहा जी लीव दिस गाय अलोन, तो मैं भी कहती हूं दुनिया को प्लीज लीव दिस गाय अलोन प्लीज, यानी व्हाट इज दिस, ये क्यों उसके मासूम के पीछे पड़ गए, इतना जबरदस्त प्लेयर है तो क्या हुआ 3 मैचों में अगर बंदा जो है कम उस पर हुआ, वैसे तो इतना जबरदस्त प्लेयर है ना, छोड़ो भाई भाईजान का पीछा छोड़ो। एंड जनाब एब्सोल्यूटली अवर लेस्ट न्यूज एंड एज आई प्रिडिक्टेड कि ये जो साउथ अफ्रीका और यूएस के बीच में मैच था उसमें साउथ अफ्रीका जीता 18 रन से एट T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मैच एट सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम इन नॉर्थ साउंड और साउथ अफ्रीका ने बनाए थे 195। कोगिसो रबादा ने लिए 3 विकेट्स फॉर 18 रन्स इन 4 ओवर्स, स्टीवन टेलर ने बनाए 24 लेकिन फिर उसके बाद जो है यूएसए अपनी इंटरवल बिल्कुल रेगुलर इंटरवल से अपनी विकेट्स लूज करता गया। नीतीश कुमार ने बनाए 8, स्किपर एरन जोन्स ने बनाया 0, कोरी एंडरसन 2, शायान जहांगीर 3, लेकिन जो एंड्रियस गूस और हरमीत सिंह थे उन्होंने फिर 91 का स्टैंड दिया। यूएस को चाहिए थे 28 रन्स ऑफ 12 बॉल्स लेकिन रबादा ने 19 ओवर्स में फिर दिखाए कमाल और हरमीत को अपनी पहली बॉल पे ही आउट किया। हरमीत ने बनाए थे 38 फॉर 22 बॉल्स, यूएस को आउट किया इन्होंने 176 फॉर 6 इन 20 ओवर्स में। गाउस जो था उसने स्कोर किया 80 ऑन 47 बॉल्स, यूएस जो था उसने पहले जो था टॉस जीत के साउथ अफ्रीका को कहा था बैटिंग करने के लिए, रीजा हैंड्रिक्स जो है उनको 11 रन पे आउट कर लिया गया था। साउथ अफ्रीका की हालत पतली थी, 16 पे 1 आउट था इन 2.4 ओवर्स लेकर फिर क्विंटन डिकॉक ने 74 बनाए ऑफ 40 बॉल्स, 110 रन की इन्होंने बनाई पार्टनरशिप विद स्किपर एडन मार्कम। साउथ अफ्रीका जो है उसने भी बहुत जल्दी जल्दी लूज की थी लेकिन फिर इन दोनों ने साथा दी थी। डेविड मिलर हो गए थे 0 पे आउट, मार्कम ने बनाए 46, हेनरिक क्लासल ने 36 ऑफ 22 बॉल्स, ट्राइस्टन स्टब्स ने 20 ऑफ 16 और वो आखिर वक्त तक क्रीज पे रहे। यूएस के सौरभ नत्रावलकर जो हैं भाई जबरदस्त किस्म के बॉलर हैं, उन्होंने 2 विकेट्स ली 21 रन्स के लिए इन 4 ओवर्स और हरमीत सिंह जो है उसने भी 2 विकेट्स ली फॉर 24 रन्स। तो भाई क्या बात है इसकी, यूएस टीम की जबरदस्त, बहुत ही अच्छा भाई खेलते हैं ये। तो मगर बहरहाल आज साउथ अफ्रीका से है कि और जाहिर है हमारे तोते ने तुम्हें पहले ही बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल, इस वर्ल्ड कप के बाद मैंने जो है बस मजार खोल लेना है माजर।
अच्छा,
भाई
आज शाम का जो मैच है उसमें क्या है?
आज शाम का जो मैच है जी, हमारे एक्सपर्ट जो है कैसर सगीर होंगे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रहे हैं और बड़ा लंबा उनका तजुर्बा है जी, स्पोर्ट्स को बड़ा कवर करते रहे, उनके साथ हम बैटिंग करेंगे और पीआर मोहब्बत की। और कल जो है हमारे अपना इन हाउस जो एक्सपर्ट है जीशान, वो हमारे साथ होएगा, जो बड़े आंकड़े लेकर आता है, लोग उसको बड़ा पसंद कर रहे हैं, बड़े उसके पास स्टैट्स होते हैं भाई, है ना, और बहुत मेहनत करके आते हैं, अमेजिंग, उसको सारा उसको जो है ना इन साइड आउट स्टोरियां पता होती हैं। और फिर हमारे साथ होंगे फ्राइडे को अमिताभ सक्सेना, ठीक है जी, यस, वो होंगे फिर, वो हमारे भी, वो भी बड़े एक्सपर्ट है ना, वो भी बड़े बहुत सारे स्टैट्स लेकर आते हैं वो भी, और उसको वैसे भी वो मुझे लगता है वो भी जो है वो कीड़े हैं बिल्कुल क्रिकेट के, देखते रहते हैं, क्योंकि उसको भी वो उस जमाने में ये हुआ था और उसमें ये खेला था और ये इसने जितने बनाए थे और इतने, ही नोज ऑल्सो अ लॉट ऑफ स्टैट्स
बाय हार्ट,
बाय हार्ट, हाँ हाँ हाँ, बड़ा उसको भी याद होती हैं चीजें। तो बस जनाब ऐसे है,
ये थी हमारी न्यूज, मगर जाना नहीं है आपने कहीं पर, क्योंकि अब शुरू होगा स्पेशल बुलेटिन ऑफ
क्रिकेट,
क्रिकेट वर्ल्ड कप
स्पेशल होता है, स्पेशल सेगमेंट,
स्पेशल सेगमेंट,
हाँ स्पेशल सेगमेंट,
सेगमेंट है,
हाँ
उसमें आप भी हैं,
हम नजर आ जाएंगे थोड़े बहुत हम भी, अगर आमिर ने मेरी तरफ अगर कर दिया कैमरा और ना, वो आमिर अपने ऊपर कैमरा रखता है और बातें भी बहुत ज्यादा करता है, मेरी तो बातों की बारी नहीं आती इस प्रोग्राम में,
देख लो,
हाँ देख,
क्या वक्त आ गया है,
क्या वक्त आ गया,
देखो निशानी है,
हाँ सिर्फ जीशान और आमिर आपस में बातें करते हैं तो मैं तो चुप बैठी रहती हूँ उस प्रोग्राम में, मेरी तो आवाज नहीं आती,
मैं बिलीव ही नहीं कर सकता ये। एनीवे कुछ फासले पैगाम लेंगे, प्रोग्राम में वापस आएंगे और स्पेशल सेगमेंट ऑफ वर्ल्ड कप आपके लिए पेश करेंगे शाजिया जी, इसके साथ साथ जीशान अहमद एंड आमिर अहमद आपको लेके जाएंगे और पूरी पूरी क्रिकेट की सैर करवाएंगे। चलिए कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम, विल बी राइट बैक, डोंट यू गो अवे।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
770 AM दिया नशरियात सुनन ते हालात हाजरा तो बा खबर रहने दे वास्ते न्यूज इंफॉर्मेशन एनालिसिस इलेक्ट्रिक गड्डियां दे विच ई आवाज ऑफिशियल ऐप या साडी वेबसाइट eawaz.com लोकल नंबर 6478724900
अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन 9058747171।
क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेंट एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 6472903773 ऑल स्टेट के साथ अब महफूज हाथों में है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
ओए, एक ब्लॉकबस्टर प्लान बनाइए, पूरी मस्ती मजे नचना गाना हो जाए।
ਇਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਟੋਲਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲਓ ਤਿਆਰੀ। ਰੋਜਰਸ ਮੋਬਾਈਲ ਕਸਟਮਰ ਬਣੋ, ਫਿਰ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਜਰਸ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਕਾਨਸਰਟ ਦੀਆਂ 2 ਟਿਕਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਾਓ। ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਸਵਿਚ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਰੋਜਰਸ ਗਿਵ ਅਵੇ / ਦਿਲਜੀਤ ਤੇ ਜਾਓ।
ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲੂਬ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਪਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟਰੱਕ ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਤੇ ਦੇਣਗੇ $75 ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ, $75 ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ, ਫ੍ਰੀ ਟਰੱਕ ਰੀਸ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਬਾਰਬੇਕਿਊ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੋ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲੂਬ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਔਨ ਹਾਈਵੇ 401 ਤੇ ਪਾਓ $75 ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ। 519-622-0660 519-622-0660 ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲੂਬ, ਲੈਪਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ।
कहते हैं कि माया को खींचे माया कर कर लंबे हाथ। हैरी सॉन द मेजेस्टिक मॉर्गेजेस के साथ रेजिडेंशियल कमर्शियल मॉर्गेज रीफाइनेंसिंग आपने करनी है, किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है, सारे बैंकर्स और लेंडर्स के साथ डीप ताल्लुक आते हैं इनके, आपको फाइनेंसिंग का बंदोबस्त दिया जाएगा और चार्जेस भी कोई नहीं देने पड़ेंगे। हैरी सॉन जी बड़ी कमाल की तिगड़म लड़ा सकते हैं, बस आप कॉल कर लीजिए और पैसे का रेंज हो जाएगा। $228 से $1,000 महीना कैसे बचा सकते हैं, कॉल हैरी सॉन Now 647-228-1000 Harry Sond of Majestic Mortgages.
ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਕੈਲੇਡਨ ਸਬਜ਼ੀ ਫਾਰਮ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਿਖਰੇ ਪੌਦੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ, ਮਿੱਟੀ ਗਮਲੇ ਤੇ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਤਨੂਰ, ਮੰਜਾ ਤੇ ਟੋਲ, ਫੋਲਡਿੰਗ ਬੈਡ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੌਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕੈਲੇਡਨ ਸਬਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 12050 ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ, ਕੈਲੇਡਨ, 9058409000 905-840-9000 कैलेडन सब्जी फार्म।
इन सब कामों के लिए तो मुझे बैक होम ही जाना पड़ेगा।
कौन से काम?
वही बेटी की शादी सर पर है और ज्वेलरी का खास काम अभी तक नहीं हुआ।
बस इतनी छोटी सी बात, पायल ज्वेलर्स पे सब किस्म की ज्वेलरी है और वो स्पेशलाइज करते हैं इन सब में ही, दुबई, सिंगापुर, इंडिया, पाकिस्तान और यहाँ की तमाम लेटेस्ट ज्वेलरी।
मुझे उनका एड्रेस बताओ, मैं आज ही ये काम जाके करवाती हूँ।
जी जी बिल्कुल, पायल ज्वेलर्स का एड्रेस है 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव, यूनिट 42, ब्रैम्पटन, पायल ज्वेलर्स। कॉल करें 9057907879, दैट इज 9057907879।